तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसकी हम बात करते हैं तो हमें उनके वो बयान याद आते हैं, स्पीचेस याद आती हैं जो उन्होंने पार्लियामेंट में दी हैं। हम उनकी बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये एमपी कैसे इतना हमारे बारे में जानता है। उनका स्टेटमेंट बहुत निजी लगता है, हमसे बहुत जुड़ा हुआ लगता है। हमारे ऐसे ही सारे विचारों को संसद में आवाज देने वाले मनोज जी आज हमारे साथ हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
थैंक यू अमर जी।
तो सर, हम इस कॉन्वर्सेशन में बहुत कैजुअल अपना जो भी एटीट्यूड है वो रखेंगे। मैं शुरू से थोड़ा जानना चाहता हूँ, काफी एक क्यूरियोसिटी रही है, क्योंकि तो मेरा अपना निजी मानना रहा है कि आपका बचपन कैसा बीता, या आपके वो शुरुआती दौर कैसा था, आसपास का माहौल कैसा था, किस लोगों का इन्फ्लुएंस था, क्या किताबें थी, या कोई दोस्त था जिसका आप पे बड़ा इन्फ्लुएंस था, या माता पिता की परवरिश ऐसी थी। इसलिए हम थोड़ा समय में पीछे जाते हैं, और आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर चाइल्डहुड एंड योर ग्रोइंग अप इयर्स।
आपने तो मुझे आपने जब कहा कि कैजुअल होगा तो मैं नहीं समझा कि मुझे आप इतना पीछे ले जाएंगे। फिर भी क्या कहूँ, छोटा शहर है, एक अभी भी छोटा ही है बिहार का, उसका नाम है सहरसा। वहां जन्म हुआ, माता पिता दोनों शिक्षक, विश्वविद्यालय कॉलेज में पढ़ाते थे, तो घर में पढ़ाई लिखाई का थोड़ा माहौल था। लेकिन मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से ही पढ़ने में बड़ा 30 मार्क खां था, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे खेलने में ज्यादा अच्छा लगता था, क्रिकेट खेलता था मैं, बाद में अपने डिस्ट्रिक्ट तक भी पहुंचा। लेकिन पिता ने एक समय कह दिया कि या तो पढ़ो या खेलो, तो जाहिर तौर पर एक मध्यम वर्गीय परिवार में ये था कि आपको, आपके पास कोई एक पूंजी ही नहीं है, सिर्फ ये पूंजी है कि पढ़ाई करो। तो पढ़ाई पर फिर ज्यादा फोकस हो गया। मुझे एक चीज जो बचपने से जो मैं जरूर शेयर करूंगा कि मैंने कोर्स की किताबों से ज्यादा बाकी किताबें पढ़ी। जैसे मेरी माँ बहुत पढ़ती थी, शरद साहित्य और बंगला से अनुदित किताबें, तो एक तरह से टैगोर, शरद, बिमल मित्र जैसे लेखकों को मैंने बहुत, अगर आज कहूँ तो वो अर्ली एज में पढ़ा। मैंने 6ठी 7वीं मैं लगभग पढ़ लिया था, बहुत बड़ा एक, खास करके बंगला से अनुदित साहित्य। उसके पीछे कारण भी था कि बंगाल का जब डिस्क्रिप्शन होता था तो बड़ा अपना सा लगता था, खान पीन, बोल चाल, और मैथिली और बंगला का वैसे भी थोड़ा सा ताल्लुक बहुत गहरा है। अगर मुझको किसी एक व्यक्ति को एक्नॉलेज करना पड़े जिन जिनकी किताबों ने मुझको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, तो वह है राही मासूम रजा। पिता के लिए कभी कभी चिंता का विषय भी होता था कि मैं, जैसा मैं पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं देता था जितना टेक्स्ट बुक की किताबों से इतर इन किताबों को पढ़ना। और बिहार में उस दौर में भी, अभी भी एक बड़ा स्ट्रेट लाइन होता है कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ पढ़ाई, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा उसमें था, उसकी वजह से एक आध बार पापा को, घर में लोगों को बुरा भी लगता था। बहरहाल वहां से बढ़ते बढ़ते फिर मैं तो रांची पहुंचा, वहां से मैंने +2 किया सेंट जेवियर्स कॉलेज से। दोस्त मुझको बचपने से बहुत थे, आज भी दोस्त बहुत हैं। और आमतौर पर कहते हैं कि जैसे लव एट फर्स्ट साइट होता है ना, मुझे दोस्ती फर्स्ट साइट होती है, और वो आज तक वो ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। और मैं जब पलट के भी देखता हूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि फलाने दोस्त ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बल्कि किसी ने बुरा नहीं किया आज तक, और दोस्त बहुत रहे। फिर रांची से पटना आया, पटना से ग्रेजुएशन किया, फिर 90 में आकर के दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वहां भी एक दिलचस्प कहानी है, मैं आया था जेएनयू में एडमिशन के लिए। जेएनयू में शुरुआती 2 लिस्ट में मेरा एडमिशन नहीं हुआ, तो मैंने एक फॉर्म भर रखा था डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो वहां मुझे नामांकन भी मिल गया और एक हॉस्टल में अलग सा कमरा मिल गया, जो बिहार से आने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी।
बिल्कुल
तो मैंने फौरन वहां ज्वाइन कर लिया। तो ये नटशेल में बोलूं कि ये यात्रा रही पढ़ाई की। उसके बाद मुझे एमए करते ही नौकरी मिल गई, उसके लिए मुझको स्ट्रगल बहुत नहीं करना पड़ा लंबा, कि लंबा एडहॉक 3 साल पढ़ा रहे। मैं बमुश्किल मैंने 2 महीने एडहॉक पढ़ाया जामिया मिलिया में, और मुझे वहां परमानेंट जॉब मिल गई। फिर 2002 में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गया, और उसके बाद वहीं हूं अभी संसद में हूँ, लेकिन पढ़ाता भी हूँ। अभी आपसे बातचीत के बाद तकरीबन 2 बजे मेरी एक क्लास भी है।
आप जब बात कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि साहित्य से बहुत कम उम्र में ही आपका वाबस्ता रहा। मैं एक चीज समझना चाहता हूँ कि आपकी जो फॉन्डनेस है जवाहरलाल नेहरू के प्रति, क्या ये उसी उम्र में पड़ी थी या उसके बाद जब ग्रेजुएटिंग ईयर्स में?
देखिए, ये बहुत अर्ली चाइल्डहुड में पढ़ी थी, बहुत अर्ली चाइल्डहुड में। मेरे गांव में मैं छोटा था, मुझे याद है तकरीबन 8-10 साल का होऊंगा। एक खंडहर नुमा इमारत मैंने देखी थी, तो मैंने अपने पिता से पूछा, ये उन्होंने कहा ये मिलन मंदिर है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत जवाहरलाल नेहरू ने इसको बनवाया। वो पहला नेहरू की बनाई किसी चीज से मेरा पहला तारुफ था, ताल्लुक था, और
तो
मुझे बेहद अच्छा लगा।
दैट मिलन मंदिर वॉज लिटरली अ टेम्पल और इज इट अ प्लेस टू हैंग आउट
नहीं,
एंड गेट टूगेदर?
वो कम्युनिटी हॉल की तरह।
ओके,
लेकिन
हाँ
देखिए,
हाँ
मिलन मंदिर नाम, और
बिल्कुल
बावजूद कि उस नाम में मंदिर था, वो किसी को एक्सक्लूड नहीं करता था। आज के जब हम कई मंदिरों की बात करते हैं, तो वो एक्सक्लूड करता है। नेहरू के जो मंदिर की संकल्पना थी ना, वो किसी को बहिष्कृत नहीं करती थी, और वो मेरा पहला था। उसके बाद फिर नेहरू में भी दिलचस्पी हुई, तो पढ़ना शुरू किया। और नेहरू को मैंने कभी भी, सच बताऊं आपसे, मैं विशुद्ध पॉलिटिशियन नहीं माना मैंने कभी, क्योंकि पॉलिटिशियन उतना रोमांटिक नहीं हो सकता, उतना रूमानी चरित्र का नहीं हो सकता कि मुझे ये करना है, मैं वोट की परवाह नहीं करूंगा, मंच पर जाकर के खुद अपने उम्मीदवार को हराने की बात कह दे, इसे हरा दो, मैं गलती से इसको टिकट मैंने दे दिया है। ये मतलब ये नेहरू की ऐसी चीजें हैं जो देश की विरासत है, कांग्रेस की नहीं। और ये मैं बार बार कहता हूं कि जब आज एक दौर चल पड़ा है कि मृत हीरोज को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने की आवश्यकता इस बात की है, हमारे पास बहुत कुछ है ग्रहण करने के लिए, बाबा साहब से, बापू से, नेहरू से, आजाद से, पटेल से। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सब परफेक्ट, लेकिन उनके अंदर इतना था निजी से ऊपर समुदाय के लिए, समष्टि के लिए, उसको आज ग्रहण करने की आवश्यकता है। और ये जो स्नेह नेहरू से शुरू हुआ, वो अब तक कंटिन्यू किया और कर रहा है, क्योंकि मैंने 14 के बाद चिट्ठियां भी लिखनी शुरू की, हर साल लगभग, या तो उनकी पुण्यतिथि पे या उनकी जन्मतिथि पे, कभी अंग्रेजी में कभी हिंदी में मैंने खत लिखे। और जो कुछ मन में था नेहरू को कहने का, तो वो एक एक तरह से संवाद करने की कोशिश की, उससे
जी
अपने को भी, अपने अंदर का भी, जो वो एक साइकोलॉजी में कहते हैं वेंटिलेशन, कैथारसिस, और मेरा भी हुआ। परेशान बहुत है डेमोक्रेसी को लेकर के, संस्थाओं को लेकर के, संस्था तो किससे कहें, चलो एक ऐसे व्यक्ति से कहते हैं और जो जिसका जवाब नहीं आएगा, लेकिन कम से कम मन को संतोष होगा कि मैंने वो चीजें पब्लिक डोमेन में उस व्यक्ति के माध्यम से रख दी। बस ये
बहुत अच्छी बात आपने एक बताई, क्योंकि मैं जब देख पढ़ रहा था आपके बारे में और ये मंदिर वाला किस्सा मुझे पता था कि मिलन मंदिर उन्होंने बनाया, तो मेरे मन में ये था एक विचार कि आज के समय में जब शायद रंग मात्र से ही हम एक परसेप्शन बिल्ड कर लेते हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक कॉन्वर्सेशन है जिसको मैं टच करना चाहता हूँ। अप्रैल 2022 की बात है, शायद आपका DU में लेक्चर था और दो शायद कॉलेजेस में वो लेक्चर था, उसके बाद आपके भी स्टेटमेंट्स आए, फिर उसके बाद आपने बताया कि शायद कॉलेज ने भी आपको कुछ बताया कि क्या रीजन था। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये आइडियोलॉजी जिन लोगों से सबसे ज्यादा बचाने की जरूरत थी, जो यंग डेवलपिंग माइंड है, जो शायद अभी ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं,
देखिए,
उन तक पहुंच गई है? क्या महसूस होता है आप?
एक चीज तो मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहूं कि जब मेरा लेक्चर कैंसिल हुआ, तो मुझे दो बात को लेकर के बहुत कष्ट हुआ। पहली
जी
ये कि उस विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, अगर मेरी बात थ्रेट बना देती या एनिमोसिटी हो जाती दो समूहों में, तो मैं तो डेली क्लास लेता हूं, वीक में 3 तो लेता ही हूं, और 100 की संख्या में स्टूडेंट होते हैं। ना मेरे स्टूडेंट को, ना मुझे कभी एहसास हुआ कि संवाद में ऐसी गांठें पड़ रही हैं, पहला इस चीज के लिए। दूसरा, मैं ये भी कहूं कि 14 से पहले भी मैंने खुद अपने विश्वविद्यालय में एक्सट्रीम पोजीशंस वाले लोगों को बुलाया, फार राइट और फार लेफ्ट एक साथ, असल में जब हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी की जिस किसी ने भी संकल्पना की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट में, तो उन्होंने उसका दायरा और सीमित किया था। आप असेंबली में ही देखिए कि एक तरफ एक्सट्रीम लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, ये हमको सूट नहीं करेगा, एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं होना चाहिए, लिमिटेड फ्रेंचाइज होना चाहिए, लेकिन ये सारी बातें सुनी गई। डेमोक्रेसी का असल मतलब होता है कॉन्वर्सेशन। अगर आपने कॉन्वर्सेशन को खत्म कर दिया तो कितनों संसद की नई इमारत बना लें, बुलंद इमारत बना लें, ताजमहल से बेहतर बना लें, उसके अंदर स्पंदन हीन हो जाएगा। दुख है कि आज के दिन में शायद पार्लियामेंट में कॉन्वर्सेशन थोड़ा बेहतर है कंपेयर टू कॉन्वर्सेशन ऑन द यूनिवर्सिटी कैंपस, कॉन्वर्सेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। पार्लियामेंट में कम से कम मैं प्रोटेक्टेड हूं, लोग प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन इन जगहों पर जहां एक्चुअली मतलब प्रोटेक्शन से मेरा मतलब था कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है कि आई कैन नॉट बी अरेस्टेड फॉर समथिंग आई हैव स्पोकन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, बट द सेम काइंड ऑफ फ्री फ्लो आर्ग्यूमेंट और कॉन्वर्सेशन डज नॉट फाइंड ट्रैक्शन ऑन द यूनिवर्सिटी कैंपस। वॉट इज गोइंग रॉन्ग? ये सवाल सिर्फ विपक्ष का नहीं, सत्ता पक्ष का नहीं, ये सवाल लोकतंत्र की मूल आत्मा का है। अगर आप कॉन्वर्सेशन बंद फनलिंग कर देंगे, उसको चेक करेंगे, तो फिर आप वो हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते थे अपने लोकतंत्र से हासिल करना। मैं आपको बताऊं कि कश्मीर को लेकर के ही मेरे विश्वविद्यालय में हमने एक्सट्रीम पोजीशंस वालों को एक साथ बुलाया, बातचीत हुई, बहुत तलखी रही, लेकिन बातचीत तो हुई, खून खराबा नहीं हुआ। ये जो बातचीत की रवायत, उसकी परंपरा, वी आर स्लोली किलिंग इट। और ये मुझे, मैं स्पष्ट तौर पे कहूं कि ये इंडियन डेमोक्रेसी को जो रिवेट वाइटलाइज करने की आज जरूरत है। अगर इस तरह की धियां चलेंगी ना, तो हमारा लोकतंत्र मतलब बिल्कुल तंत्र के अधीन हो जाएगा, और वो तंत्र स्पंदनहीन, जैसा मैंने पहले कहा, उसके अंदर आत्मा नहीं होगी, वो आपको कुछ ऑफर नहीं कर पाएगा नया। हम ठहर से जाएंगे, और ठहरा हुआ लोकतंत्र फिर पीछे जाने लगता है, वो आगे नहीं जाता।
बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि एक ठहरा हुआ लोकतंत्र है जो डायनामिक तरीके से इवॉल्व होना चाहिए, जो एक मोमेंटम होना चाहिए कंटेम्पररी सोसाइटी में भी। डायलॉग का जब हम बात करते हैं, जब हम डायलॉग की बात करते हैं कि हमारे आपस में एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, साथ ही साथ इन पार्लियामेंट, तो एक जो अवधारणा बन रही है कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट एज एन इंस्टीट्यूशन फेल कर रहा है वो चीज डिलीवर करने में जो उसको करनी चाहिए थी, उसके विषय में आप क्या कहेंगे?
नहीं देखिए, बिल्कुल मैं जैसे छोटा एक उदाहरण दूं, नेहरू से बात शुरू हुई थी,
जी
आप और हमारे तमाम जो लोग सुन रहे हैं या सुनेंगे, आप पहली लोकसभा देखिए, दूसरी देखिए, तीसरी, नंबर ऑफ सिटिंग डेज आप देखिए, और नंबर ऑफ सिटिंग डेज आप देखिए, जमीन आसमान का फर्क। जब आप सदन के बैठने के दिनों को कम कर देते हैं, यानी कि संवाद की परिमिति को भी छोटी करते जाते हैं, उसके घेरे को छोटा करते जाते हैं। दूसरा, मेजोरिटी इज अ मस्ट इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बिकॉज अ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट गेन्ड मेजोरिटी, बट दैट मेजोरिटी हाउ सो एवर ओवरवेलमिंग इट इज, हाउ सो एवर ह्यूज इट इज नॉट अ लाइसेंस फॉर मेजोरिटेरियनिज्म। हमारे हाल की सरकारों ने मेजोरिटी को मेजोरिटेरियनिज्म का लाइसेंस समझ लिया, और मेजोरिटेरियनिज्म, माफी के साथ कहता हूं, कि कोई इस मुगालते में ना रहे कि वो मेजोरिटी में है, यानी हिंदू मेजोरिटी के हक में है। मेजोरिटेरियनिज्म इज एंटीथेटिकल टू डेमोक्रेसी। वो आपके घर में, आपके परिवेश में, आपके परिधान पे, आपके भोजन पे, आपकी पूजा पद्धति पे, आपकी आस्था पे, आपकी पॉलिटिकल बिलीफ पर मेजोरिटेरियनिज्म हमला करे, क्योंकि मेजोरिटेरियनिज्म का एक बड़ा कॉन्स्ट्रिक्टेड सेंस होता है। और मैं उदाहरण नहीं देना चाहता था, लेकिन मैं कहूंगा कि एडोल्फ हिटलर वांटेड टू क्रिएट अ मेजोरिटी होम स्टेट, और उसने तय कर लिया कि रीजन खत्म हो जाए। अभी एक किताब मैं पढ़ रहा हूं इन दिनों, स्लीप ऑफ रीजन। स्लीप ऑफ रीजन का मतलब यह है कि आप अपने तर्क को सोने देते हैं। बीते 8-10 वर्षों में, माफी के साथ, टू यू ओमवेश जी एंड टू ऑल आर फ्रेंड्स, वी हैव अलाउड आर रीजन टू गो फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग स्लीप। और जब तर्क को सुला दिया जाता है ना, तो अर्ध सत्य झूठ प्रबल हो उठता है। आज हम उसी दौर में जी रहे हैं। पार्लियामेंट में एवरेज बिल 2.5 से 3 मिनट में पास होता है। आपने तय कर लिया है, सरकार को कई दफा लगता है कि सारा विजडम उनके पास है। मैं मानता हूं आपको जनता ने चुना है सरकार चलाने के लिए, लेकिन विपक्ष को भी जनता ने रखा है आपको सलाह देने के लिए, आपकी आलोचना के लिए। यू शुड बी ओपन टू क्रिटिसिज्म, यू शुड बी ओपन टू सजेशन, चाहे मामला चाइनीज बॉर्डर का हो, इंडो पाक रिलेशन का हो, इकोनॉमिक जो सिचुएशन है आज के दिन में उसका हो, सोशल सोशल कॉर्डियलिटी का हो। यू शुड बी ओपन टू क्रिटिसिज्म। ये चीजें खत्म हो रही है। और एक जो सबसे खराब चीज बीते दिनों इसका जन्म हुआ, आपने देखिए, राष्ट्र एक अवधारणा है, अच्छी अवधारणा है, जिसके
जी
मैं समझता हूँ हम जीते हैं, सांस लेते हैं, अपने को अपनी पीठ थपथपाते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन राष्ट्र के प्रधानमंत्री और राष्ट्र एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बीते कुछ वर्षों में कॉन्शियस की गई है कि द नेशन एंड द प्राइम मिनिस्टर दे आर वन एंड द सेम। क्रिटिसिज्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज प्रेजेंटेड एज क्रिटिसिज्म ऑफ द नेशन इटसेल्फ। सीरियसली बात है कि अगर मैं, ओमवेश जी, अपने मुल्क की बेहतरी चाहते हैं और बेहतर आर्थिक नीतियां चाहते हैं, समावेशी चरित्र चाहते हैं, हो सकता है हम तत्काल की सरकार की आलोचना करें, और करना पड़ेगा, चाहे केंद्र
जी
की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, लेकिन ये आलोचना राष्ट्र की आलोचना नहीं। और जब 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 ऐसा किया गया, 75 से 77 के बीच में, इंदिरा जी के दौर में ऐसा करने की कोशिश की गई इमरजेंसी के माध्यम से। आज बगैर इमरजेंसी ले लाए, एक मेजोरिटेरियन फ्रेम के तहत, जहां मीडिया कॉम्प्लिसिट है, कॉम्प्लिसिट ही क्या कहूं, मीडिया इज एन एक्टिव पार्टनर इन टेकिंग दिस मेजोरिटेरियन इथॉस टू द पीपल एवरी डे 24/7, वी आर लूजिंग द ग्रेटेस्ट प्लॉट ऑन विच आवर डेमोक्रेसी हैज थ्राइव्ड सो फार, हैज गेन्ड मोमेंटम, हैज अचीव्ड हाइट्स। टुडे वी आर लूजिंग दैट एसेंशियल प्लॉट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी इन जनरल।
बिल्कुल, इसी कॉन्वर्सेशन में मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि वो समय जब हम सेलिब्रिटीज की अगर बात करते हैं, उन लोगों की बात करते हैं जिनको हम आइडलाइज कर रहे हैं, उसमें कौन है, मूवी स्टार्स हैं, उसमें कौन है, रुतबा दम बाहुबल रखने वाले पॉलिटिशियंस हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ऑब्वियसली। बट जब हम वेस्ट की तरफ देखते हैं, वहाँ अगर हमारे पास ट्रम्प हैं तो हमारे पास कार्ल सेगन थे। हम इंडिया में अगर वही कंपैरिजन ड्रॉ करें तो उनके क्लोजेस्ट इंडिया में हम एपीजे अब्दुल कलाम को देखते हैं। लेकिन उसके बाद मैं आपसे पहले बतौर शिक्षक और उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जानना चाहूंगा कि क्या वजह रही है, क्या वो हमारा सिनेमाई इन्फ्लुएंस रहा है या हमारा इवॉल्व होना एज अ सोसाइटी रहा है कि हम शिक्षकों को, वैज्ञानिकों को आइडलाइज नहीं कर पाए, अपनी इंस्पिरेशन नहीं बना पाए, हम कैसे फेल कर गए। तो इस विषय में मैं पहले बतौर शिक्षक, उसके बाद बतौर
नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा सवाल पूछा आपने,
जी
और मुझे अच्छा लगेगा इस पर अगर मैं, जैसे आपने कार्ल सागन की बात की, ट्रम्प की बात की, चलिए कार्ल सागन भी ना लूं, या वो ये थे जिन्होंने पीपल्स हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स लिखा था,
जी
हाउस उसी अमेरिका थे, उसी अमेरिका में बर्नी सैंडर्स
बिल्कुल
जो बिल्कुल कैपिटलिज्म की उलट की जुबान बोल रहे हैं, और बहुत बड़ा योगदान था, मैं समझता हूँ, इवन जो बाइडन के इलेक्शन में ट्रैक्शन पैदा करने में बर्नी सैंडर्स का हाथ था, प्राइमरीज के लिए वो आखिरी तक कंटेस्ट में थे। देखिए, अथॉरिटेरियनिज्म ने नुकसान कितना किया है, एक पहले तो अथॉरिटेरियनम रात रात रातों रात 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 भर में नहीं आ जाता है। द ग्राउंड वर्क इज डन वे वजह मैंने अभी एक रीजन वाली बात कही। अथॉरिटेरियनिज्म की पहली शर्त होती है कि यू शुड फॉरगेट द आइडिया ऑफ रीजन। रीजन होगा ना तो आप तर्क करिएगा, और तर्क करिएगा तो आप अच्छे बुरे की समझ होगी। आप किसी से मोहब्बत भी करेंगे तो ये सोच करके कि मैं इससे मोहब्बत करता हूं लेकिन इसमें ये कमियां हैं। तर्क को खत्म करने का मतलब है आप कमियां देख ही नहीं पाएंगे, देखेंगे भी तो आप चुप रहेंगे, क्योंकि चुप रहना अथॉरिटेरियनिज्म की पहली शर्त। अब आपको मैं एक छोटा उदाहरण दूं। जब 14 में कैंपेन 13 में शुरू किया मोदी जी ने, पहली
जी
बार इस देश में एक कैंपेन आया कांग्रेस फ्री इंडिया, राइट, विच हैज नाउ टर्न इनटू अपोजिशन फ्री इंडिया। दुनिया में कोई एक देश मुझे बता दीजिए जहां एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से देश को मुक्त करना चाहती। चुनाव में अलग बात है, लेकिन यूजिंग दिस क्लिनिकल लैंग्वेज ऑफ अपोजिशन फ्री इंडिया, इट साउंड्स लाइक बैक्टीरिया फ्री वाटर। ये हटा देना है, सर्जिकली खत्म कर देना है, चाहे कोई भी हो, साम दाम दंड। मैंने कभी रिपब्लिकन पार्टी के लीडर को नहीं सुना है वी वांट डेमोक्रेटिक पार्टी यूएस। अवधारणाएं होती है हमारी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मल्टी पार्टी इस पर जीती है, एंड दैट मेक्स इट ग्रेट। आपको कहीं से आकर के भारत को श्रेष्ठ नहीं बनाना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत श्रेष्ठ था, श्रेष्ठतम बनाने के लिए आवश्यक है कि आप इन रवायतों का कत्ल करें। लेकिन इट हैज बीन किल्ड। एक नई सिटीजनरी तैयार करने की कोशिश हो रही है, जो आप देखें ना शब्दों का चयन कैसे होता है। अधिकार की बात ना हो तो कर्तव्य पर बहुत फोकस होने लगा, बल्कि एक सड़क का ही नाम कर दिया गया कर्तव्य पथ। मुझे एक सड़क तो दे दो अधिकार पथ के नाम से, बाकी इसके कर्तव्य पथ। अभी मैं बॉम्बे से आ रहा था, 2-3 दिन पहले मैंने एक फिल्म देखी, जाने भी दो यारों, हमारे स्कूल के जमाने की फिल्म
जी
एनएफडीसी ने बनाई। अब आप बताइए क्या एनएफडीसी कहाँ है आजकल? क्या ये फिल्में बनाते हैं? इंदिरा जी का शासन था और करप्शन पे ये पूरी की पूरी फिल्म थी। आज संभव है? ये क्यों हुआ है? क्योंकि एक अथॉरिटेरियन फीचर के समक्ष सरेंडर करवा दिया गया है। लेकिन मैं इस बात को भी मानता हूं और आपके माध्यम से कहूं, कोई भी इस तरह का तंत्र जो विकसित हुआ है ना, वो अपना एक्सपायरी डेट लेके भी आता है,
जी
जैसे दवाइयों के एक्सपायरी डेट होते हैं। अब इसकी एक्सपायरी डेट कब है आई कांट से, बट देन देयर इज अ चर्निंग इन द कंट्री दैट हाउ लॉन्ग कैन वी बी कंफर्टेबल विथ इश्यूज व्हिच आर नॉट एवरीडे लाइफ इश्यूज फॉर अस। एवरीडे लाइफ इश्यू इज जॉब, इट्स एजुकेशन, इट्स बेटर हेल्थ केयर। मंदिर और मस्जिद, गिरजा या गुरुद्वारा, ये मेरे व्यक्तिगत आस्था की चीज है, बिटवीन मी एंड माई गॉड। और हिंदुइज्म में तो वैसे भी बहुत डाइवर्सिटी है। आई कम
जी
फ्रॉम एन एरिया जहां राम मंदिर की अवधारणा 80 से पहले थी ही नहीं, या तो शिव के मंदिर थे या तारा दुर्गा ये मंदिर थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि सडनली मैटर ऑफ फेथ विच वॉज पर्सनल बिटवीन मी एंड माई गॉड हैज बिकम, जिसको हम कहते हैं ना कि एक पब्लिक इश्यू हो गया। इन फेथ बिकमिंग पब्लिक इश्यू इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन अदर इश्यूज विच शुड बीन पब्लिक इन आर डेमोक्रेसी। ये चीजें जो हुई हैं, एक जमीन तैयार करके एक अथॉरिटेरियन, आप देखिए ना हमारी जुबान कितनी मिलिटरिस्टिक हो गई, या एनिमोसिटी की हो गई, छोड़ दीजिए एनिमोसिटी की। क्रिकेट मैच के भी जब मैं देखता हूं कि टेलीविजन में उसका ट्वीट आता है किसी चैनल का, आज हमने पाकिस्तान की पिटाई कर, आज हमने फलाने को धूल चटा दी, दिस आर नॉट स्पोर्ट्स लैंग्वेज, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ एनिमोसिटी। अब आप देखिए कि विपक्ष और पक्ष एक दूसरे से कैसे संवाद करते हैं। ये दो वैकल्पिक धाराओं के बीच बातचीत नहीं है, ये तो शत्रुओं के बीच की बातचीत है कि वो मुझे खत्म करना चाहता है, मुझे मटिया मेट करना चाहता है, तो दूसरा कहेगा मुझको रावण कह दिया, आप भले किसी को सुपर्णखा कह के निकल जाए, वगैरह वगैरह। तो ये जो लैंग्वेज का डिटोरिएशन है, ये डेमोक्रेसी के भी डिटोरिएशन का द्योतक है, हमारे विमर्श का, हमारे तबादलाए ख्याल का में भी जो गिरावट आ रही है उसका भी द्योतक।
तो शिक्षकों को या जो भी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हैं इनको मुख्य धारा में लाने के लिए क्या हम अपने तरफ से कोई योगदान दे सकते हैं या ये कैसे होगा? क्योंकि आपका स्टेटमेंट, अगर मैं जवाब जो आपने दिया उस आधार पे मुझे समझ में आ रहा है कि एक ग्रेजुअल फॉल था जो कि लिंग्विस्टिक चेंजेस की वजह से हुआ। क्योंकि अगर हम देखें तो एक पब्लिक फोरम पे डिस्कशन होता है, बहुत अच्छी बात है, डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो ऐसा डिस्कशन एलीट कल्चर तक सीमित रहा है। क्यों किसी छोटे शहर में एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर जो है वो बहुत ओपिनियटेड नहीं हो पा रहा है? क्या यही रीजन है उसका?
नहीं देखिए, दो दो रीजन है। एक तो मुझको लगता है, जो मैं स्वीकार करूंगा, कि जो हमारी सेक्युलर सोशलिस्ट धारा थी ना, उसने इन मुद्दों को जन आंदोलन में तब्दील करने में कमियां रही, और जिनसे हम लड़ रहे थे उन्होंने आहिस्ता 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 अपने मुद्दों को, जो संकीर्ण दायरे के मुद्दे थे, उसको एक विस्तृत फलक दे दिया। तो ये तो
जी
मैं मानता हूं कि हम सब की कमजोरी रही, और ये कमजोरी खत्म हो, उसी में देश का भला है। भले वो धारा भी मौजूद रहे, लेकिन एक धारा तो इतनी बलवती हो कि दूसरी धारा के समक्ष एक वैकल्पिक धारा के रूप में हमेशा मौजूद हो, वो मैं मानता हूं। दूसरा, छोटे शहरों में ऐसा नहीं कि ओपिनियन नहीं है, ओपिनियन को व्यक्त करने में खौफ का माहौल है। आज कबीर के दोहे पढ़ के कोई अगर समझाने की कोशिश करे कि कबीर क्या, देखिए कबीर पंथी बन जाना आसान है, कबीर पे माला पहना देना बहुत आसान है, लेकिन कबीर के दोहों को जीना और उसके इर्द गिर्द बातचीत करना, कितने लोग स्वीकार कर पाएंगे कबीर का दोहा, जो तू बाभन बाभनी जाया आन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरकनी जाया भितरहि खतना काहे न कराया, नहीं कर पाएंगे। मैं अक्सर पार्लियामेंट में भी एक दिन मन कहा कि अगर आज कबीर के नाम से मैं एक फेक ट्विटर अकाउंट चलाऊं और उसमें कबीर के दोहे लिखूं, तो मैं अरेस्ट किया जा सकता हूं। ये जो चीज हो गई है ना, इसकी वजह से छोटे शहरों में, बड़े शहरों में क्या होता है कि अगर किसी टीचर के साथ या किसी स्टूडेंट को उसके ओपिनियन के कारण उस पर हमला होता है, चाहे वैचारिक हमला हो या फिजिकल हमला हो, तो 10 लोग कम से कम खड़े होते हैं। छोटे शहर हमारे विमर्श का हिस्सा भी नहीं बन पाते, तो वो भी एक कारण है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट विच आई सेड दैट देर इज एब्सोल्यूट रिलक्टेंस। लोग ये सोचते हैं ना कि जैसा चल रहा है चलने दो। अक्सर लोग कहेंगे, अरे सारी क्रांति तुम्ही को करनी है, आराम से नौकरी करो, घर जा, घर से निकलो, घर वापस आओ। ये जो एक मनोदशा भी जन्मी है, जो बिल्कुल उस धारा के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी चुप्पी की मनोदशा के साथ जी रही है। ये चुप्पी की मनोदशा में जीने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब ये चुप्पी कब टूटेगी, मेरे पास कोई डेट नहीं, लेकिन मैंने ये जरूर कहा आपसे, और मैं दोहराता हूं कि
जी
मैं स्पैंगलर को मानता हूं, हालांकि उसकी धारा से सहमत नहीं हूं, उनके विचार थे, राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन जब वो कहते हैं, इवन आइडियोलॉजिकल राइज एंड फॉल होता है। एक वैचारिकी जिसका उत्थान का वक्त चल रहा हो, जरूरी नहीं कि ये दौर हमेशा रहेगा। उस
बिल्कुल
वैचारिकी के अंदर के लूपहोल्स को लोग समझने लगे हैं और बेहतर समझेंगे, और शायद फिर जाकर के चुप्पी की संस्कृति का भी खात्मा होगा।
बिल्कुल। और सबसे ज्यादा मैं शुक्रगुजार उस चीज का हूँ कि ये जो कॉन्वर्सेशन थी टीचर और स्टूडेंट वाली, क्यों हम फेल हो गए आइडलाइज करना, या सिर्फ पॉलिटिशियन ही क्यों, उसका जो जवाब था।
मुझे भी बहुत अच्छा लगा।
थैंक यू सो मच।